रोहतक के हाईवे पर खड़ी मालिनी किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। शायद उसकी गाड़ी ख़राब हो गई थी। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और वो अपना हाथ हिलाकर किसी गाड़ी को रुकने के लिए इंतज़ार कर रही थी। लेकिन काफ़ी देर तक कोई गाड़ी नहीं रुकी। फिर थोड़ी देर बाद एकाएक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुक गई। गाड़ी से एक नौजवान युवक उतरा जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल रही होगी। वो उतरकर मालिनी से बोला, क्यों मैडम आपकी गाड़ी ख़राब हो गई? आप मेरी गाड़ी में बैठ जाइए, शहर चलिए मेरे साथ और वहाँ से किसी मैकेनिक को लेकर आ जाइएगा। मालिनी ने कहा, मुझे तो तुम आदमी कुछ और टाइप के लग रहे हो, मुझे तो तुम्हारे साथ जाने में खतरा महसूस हो रहा है। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, डरने की कोई बात नहीं है, चलिए मेरे साथ चलिए। मालिनी ने कहा, चलो ठीक है। मालिनी उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। वो गाड़ी स्टार्ट करता है और थोड़ी दूर आगे चलने के बाद वो कहता है, देखिए मैंने आपका तो नाम पूछा नहीं, लेकिन पहले अपना ही नाम बता देता हूँ। मेरा नाम विशाल है, आपका क्या नाम है? मालिनी, मालिनी ने थोड़ी डरे सबर में कहा। विशाल ने कहा, अरे अरे डरिए मत, मैं इतनी आसानी से फिसलने वालों में नहीं हूँ। मालिनी ने कहा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं करी, तुम ही अजीब सी बातें कर रहे हो। विशाल हंसते हुए बोला, कुछ नहीं, आपको सब कुछ जल्दी पता लग ही जाएगा। मालिनी को विशाल की बातें थोड़ी अजीब लग रही थी। विशाल ने कहा कि देखिए ये हाईवे ऐसे ही है, यहाँ पर अगर गाड़ी ख़राब हो जाए तो दूर दूर तक मैकेनिक नहीं, बस कुछ राह चलते मनचले लोग हैं जो भली भाली लड़कियों को लिफ्ट देने के बहाने फंसा लेते हैं। मालिनी ने कहा, हाँ पर मुझे लगता है तुम उनमें से नहीं हो। विशाल ने कहा, अरे नहीं मैं तो अच्छा इंसान हूँ। ये कहते हुए विशाल गाड़ी चलाए जा रहा था। फिर मालिनी को प्यास लग गई। मालिनी ने अपनी बोतल निकाली लेकिन पानी पिया नहीं, बल्कि उसको अजीब सी नज़रों से ताक रही थी। विशाल ने गाड़ी थोड़ी धीरे करी और पानी मालिनी के हाथों से लिया और थोड़ा सा पी लिया और पीकर बोला, प्यास तो मुझे भी काफ़ी लगी थी और पानी प्यास बुझाने के लिए होता है, इस तरह ताकने के लिए नहीं। ये कहकर विशाल गाड़ी चलाता रहा। थोड़ी देर बाद मालिनी की माँ का फ़ोन आया। मालिनी की माँ ने कहा कि तुम कहाँ हो? मालिनी ने कहा, कुछ नहीं, मैं तो शूटिंग के लिए जा रही थी, मेरी एक ऐड शूट है ना, लेकिन रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई और एक सज्जन पुरुष ने मुझे लिफ्ट दे दी, मैं जल्दी पहुँच जाऊँगी। मालिनी ने यह कहकर फ़ोन रख दिया। विशाल ने थोड़े से अजीब से स्वर में कहा, देखो आज तो तुम शायद नहीं पहुंच पाओगी। मालिनी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? विशाल ने गाड़ी वहीं साइड में रोक दी और अपनी पैंट की जेब से एक बड़ी सी पिस्टल बाहर निकाली और कहा, तुम बड़ी बेवकूफ हो, किसी पर इतनी रात को ऐसे ही भरोसा कर लिया। मालिनी की आंखों में पता नहीं क्यों डर नहीं था। मालिनी हंसते हुए बोली, मुझे पता था। यह बोलते हुए मालिनी ने अपने पर्स से एक अखबार उठाकर विशाल की तरफ फेंका। विशाल ने अखबार पढ़ा कि रोहतक से शहर जाने वाले हाईवे पर कोई लेडीज़ लोगों को रात को मिलती है और पहले तो वो उन्हें बेहोश करती है, फिर एक रस्सी से गला घोटकर उनको मारकर गाड़ी के पीछे कई किलोमीटर घसीटती है। मेरे हाथ में बंदूक है, विशाल इतना बोल ही रहा था कि अचानक उसका गला रुकने लगा, उसका सांस भारी होने लगा। वो बोला, ये मुझे क्या हो रहा है, मैं सांस क्यों नहीं ले पा रहा? मालिनी ने कहा, तुमने वो जो पानी पिया था उसमें एक जहर था जो कि इंसान के शरीर को बेकार कर देता है। अब तुम ना तो हिल सकते हो ना चल सकते हो, बस ऐसा है इस तरह पड़े रहोगे। विशाल ने कहा, नहीं मुझे छोड़ दो। मालिनी ने उसकी बंदूक उठाई और दूर फेंक दी और एक बड़ा सा चाकू निकाला और उसको विशाल को दिखाते हुए बोली, तुम जैसे लोगों को ठीक करने के लिए मैं इस सड़कों पर घूम रही हूँ। तुमने देखा था क्या मेरी गाड़ी ख़राब है या नहीं? मेरी गाड़ी ख़राब थी ही नहीं और मैं शूटिंग पे जा रही हूँ, वो भी ये छोटा सा बैग लेकर। अरे इसमें तो कपड़े भी नहीं आ सकते, इसमें तो कुछ भी नहीं था सिवाय एक रुमाल और इस न्यूज़पेपर के, लेकिन तुम, तुम्हारी नज़रों से मुझे तुम्हारे इरादों का पता लग गया था, इसलिए मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हें चुना। अगर कोई अच्छा आदमी होता तो मैं उसे नहीं चुनती, उसे लिफ्ट लेती ही नहीं, लेकिन तुम मेरे शिकार थे और मैं जब तक जिंदा हूँ तुम जैसे लोगों का शिकार करती रहूँगी। अगले दिन अखबार में छपती है, विशाल अपने गाड़ी के साथ हिसार रोहतक हाईवे पर मृत पाए गए। उन्हें किसी ने रस्सी से गला घोटकर मारा था और मारने के बाद तकरीबन 3-4 किलोमीटर गाड़ी से घसीटा भी था। विशाल की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई। मारने वाला कौन था ये पता नहीं लगा, लेकिन वहाँ पर गिरे एक दो लंबे बालों से फोरेंसिक को ये पता ज़रूर लगा है कि शायद वो एक लड़की थी, लेकिन विशाल को क्यों मारा इसकी वजह पुलिस को नहीं पता लगी। लेकिन इसकी वजह क्या थी ये आपको पता लग गई है।